पृष्ठ संख्या 134, शेख निसार यूसुफ जुलेखा। प्रेम मार्गी कविता की धारा को वेग देने वाले सत कवि शेख निसार भी विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनका ग्रंथ यूसुफ जुलेखा सूफी साहित्य का एक सरस सोता है। कवि ने अपनी रचना में अपना संक्षिप्त व्यक्तिगत परिचय तथा रचना काल आदि का कुछ ब्यौरा दिया है। उन्होंने अपने निवास स्थान एवं वंश का परिचय आदि खंड में इस प्रकार दिया है। शेखपुरा अति गांव सहावा, शेख निसार जन्म तह पावा, चारिउ ओर सुघन अमराई, अगम अथाह चहु दिसि खाई, शेख हबीबुल्लाह सोहाए, शेखपुर जिन आन बसाए, पात शाह अकबर सुल्ताना, तेहिके राज कर जगत बखाना, अवध देश सूबा होय आने, 20 बरस लही रहे सोहाए, तेहिके शेख मोहम्मद बारा, रूपवंत भू पर अवतारा, तासुत गुलाम मुहम्मद नाऊ, सोहम पिता सो ताकर गाऊ, तेहि घर हौ विधने अवतारा, चारि दीप जम चौमुख बारा, समय वली सुपुरुष सुज्ञाना, रूपवंत और विधमाना। पृष्ठ संख्या 135। वंश मौलवी रूम के शेख हबीबुल्लाह, जेहि के मसनवी जगत मह, अगम निगम अवगाह, अम्बिली बिरछि न जाई बखाना, द्वारे पर जस तंबुआ ताना, ताकी छाह जो बैठे कोई, कैसो सूर की सायर होई। एक। इन पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि विश्व विश्रुत फारसी मसनवी के रचयिता मौलाना जलालुद्दीन रूमी के वंशज शेख हबीबुल्लाह ने सम्राट अकबर सन 1556-1605 ईस्वी के शासनकाल में दिल्ली की ओर से आकर अवध में शेखपुर नामक ग्राम बसाया था। शेख हबीबुल्लाह शेखपुर में 20 वर्ष रहे। उनके बेटे शेख मोहम्मद थे। शेख मोहम्मद के पुत्र का नाम शेख गुलाम मोहम्मद था। शेख निसार के ये ही पिता थे। शेख निसार शेखपुर में जन्मे थे और उनके द्वार पर एक इमली का घना वृक्ष था। इस छोटे से गांव का नाम आजकल शेखपुर जाफर हो गया है। यह फैजाबाद लखनऊ रोड पर फैजाबाद से दक्षिण की ओर 10वें मील पर स्थित है। अब भी इस ग्राम में निसार के पिता तथा उसके तीनों भाइयों की कब्रें एक नीम के वृक्ष के नीचे बनी हुई हैं, और अब भी इमली का वृक्ष अतीत की याद दिलाता है। आज भी वहाँ के साहित्य प्रेमी शेख निसार के सिद्ध हस्त एवं आशु कवि होने की यह कथा सुनाते हैं कि एक बार तत्कालीन काशी के शासक ने काशी के कवियों को निम्न समस्या की पूर्ति करने को कहा था। केहि कारण चंद्र पिपिलन खायो, परंतु किसी ने संतोषजनक कविता न रची। एक कवि ने शेख निसार से भी समस्या की चर्चा की। उन्होंने समस्या सुनते ही ये पंक्तियाँ कहीं। एक समय शिव शंकर जू भगवान के ध्यान में तारी लगायो, वर्ष सहस्र जो बीती गयो, तबहु शिवनाथ न माथ उठायो, खेह समान वह देह गई, तब चंद्र पे गाढ़ लीलाट पे आयो, शेख निसार विचार कहें, यही कारण चंद्र पिपीला न खायो। एक। यूसुफ जुलेखा आदि खंड। पृष्ठ संख्या 136। शजरा नसब मालिकान में वंशावली इस प्रकार दी हुई है। एक। शेख हबीबुल्लाह, इनके तीन पुत्र शेख मोहम्मद आरिफ, शेख मोहम्मद, शेख फैजुल्लाह। शेख मोहम्मद के पुत्र गुलाम मोहम्मद, उनके चार पुत्र गुलाम सादिक, गुलाम रसूल, गुलाम गौस, गुलाम अशरफ। गुलाम अशरफ के दो पुत्र मोहम्मद शरीफ, फरहत बीवी। मोहम्मद शरीफ के पांच पुत्र मोहम्मद नईम, मोहम्मद मुनीम, मोहम्मद जलीला, मोहम्मद खासा, मोहम्मद जमीला। मोहम्मद खासा के पुत्र अहमद अली। फरहत बीवी के पुत्र हिमायतुल्ला, हिमायतुल्ला के पुत्र मोहम्मद ताहिरा। शेख फैजुल्ला की निर्वंश ही मृत्यु हो गई। सैयद मुख्तार हुसैन, गुलाम अशरफ के पुत्र मोहम्मद शरीफ की नातिन के पुत्र की फारसी की पुस्तक मकसूदे नजात में दिए गए विवरणों से ज्ञात होता है कि गुलाम अशरफ का उपनाम शेख निसार था। इनके अन्य तीन भाइयों के नाम गुलाम गौस, गुलाम रसूल एवं गुलाम सादिक थे। शेख निसार ने शाहे वक्त के रूप में दिल्ली के बादशाह शाह आलम 1759-1806 ईस्वी की चर्चा इस प्रकार की है। आलम शाह हिंद सुल्ताना, तेहिके राज यह कथा बखाना, देहली राज करे उनीता, उमरावन तेहि कीन अनीता। एक डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के पूर्ववर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य पृष्ठ 508 पृष्ठ संख्या 137। कादिर खान सो अधम रुहेला सो अपराध कीन बद फेला पात शाह कह आंधर कीन्हा सुत और नारी सबहि दुख दीन्हा कीन अपत तैमूर घराना राज प्रताप अधम नहीं जाना। एक इन पंक्तियों में कवि ने बादशाह के विषय में लिखा है कि शाह आलम स्वयं तो नीतिज्ञ था परंतु उसके अमीर अनीति किया करते थे। कादिर खान नामक रुहेले ने दुष्ट कार्य एवं अपराध किए। उसने बादशाह की आंखें फोड़कर अंधा कर दिया, उसकी बेगमों एवं शाहजादों को कष्ट पहुंचाए। अतः वे शाह आलम के समकालीन थे। उनके जन्म संवत का संकेत उनके ग्रंथ यूसुफ जुलेखा से हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। हिजरी सन 12 से 5 बरनेउ प्रेम कथा यह साचा 1847 संवत विक्रम सेन नरेसा 1712 पुनिसाका 1790 ईसाका 57 बरख बीते आयु तब उपज्यो यह कथा बचाऊं। दो स्पष्ट है कि शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा नामक ग्रंथ की रचना सन 1205 हिजरी तदनुसार सन 1790 ईस्वी अर्थात संवत 1847 विक्रम में की। उस समय उनकी अवस्था 57 वर्ष की थी। इस प्रकार उनका जन्म संवत 1847 में से 57 वर्ष घटाने पर संवत 1790 विक्रम मानना चाहिए। यूसुफ जुलेखा की रचना उन्होंने अपने 22 वर्ष के युवा पुत्र लतीफ के वियोग से पीड़ित होकर की थी, जैसा कि निम्न पंक्तियों से सुस्पष्ट है। पुत्र अनूप दई मोहि दीन्हा रूप अनूप बुध आगिर कीन्हा 22 बरस रहा जग माही छुट विद्या उन जान्यो नाही नाम लतीफ अनूप सुहावा सब गुण ज्ञान दई अधिकावा बात भुलात नहीं पुत्र सुहावा सायर सुघर सुगंथ बनावा। एक यूसुफ जुलेखा आदिखंड, दो यूसुफ जुलेखा आदिखंड पृष्ठ संख्या 138। 22 बरस के बयस मह छाड़ दीन उनके देह मूरत अनूप गुलाब से जाए मिले पुन खेह। एक शेख निसार सिद्ध हस्त कवि थे, अतः उन्होंने उसे 7 दिनों में पूर्ण कर दिया। वे लिखते हैं 7 दिवस मह कथा समापत दूर मति नाम रहे सो सम्मत। दो कथा विषादांत है। कवि ने यह कथा नवयुवक पुत्र के निधन पर इस संसार की अस्थिरता का अनुभव करके रची। अतः कवि का उद्देश्य संसार की नश्वरता एवं असारता बताना प्रतीत होता है। यह कथा भारतीय प्रचलित कथाओं पर आश्रित नहीं है। शेख निसार रचित यूसुफ जुलेखा फारसी साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकवि मौलाना जामी प्रणीत यूसुफ जुलेखा पर आधारित है। दोनों काव्य कृतियों के प्रसंग एक से हैं। वास्तव में मौलाना जामी का पूर्णतः अनुकरण करते हुए ही कवि निसार ने अपने ग्रंथ की रचना की है। इसमें वे सफल हुए हैं। कथा काव्य की सभी विशेषताएं यूसुफ जुलेखा में मिलती हैं। मौलाना जामी ने अपनी मसनवी में ईश्वर को शाश्वत सौंदर्य कहा है। यह सौंदर्य संसार की समस्त सुंदरताओं में श्रेष्ठ है। उन्होंने इश्क मजाजी सांसारिक प्रेम को अपना कर इश्क हकीकी ईश्वरीय प्रेम प्राप्त करने का आदर्श प्रस्तुत किया है। मौलाना जामी यूसुफ जुलेखा में लिखते हैं कि उनके गुरु ने स्पष्ट रूपेण कहा है कीबे जामे मैं ए सूरत काशीदन नयारी जुरा ए मानी चशीदन। तीन अर्थात लौकिक प्रेम का रसपान किए बिना तू अलौकिक प्रेम की मदरा नहीं पी सकता। एक यूसुफ जुलेखा उपसंहार, दो वही आदिखंड, तीन मौलाना जामी यूसुफ जुलेखा नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1896 ईस्वी 34। शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा में भी इश्के मजाजी को इश्के हकीकी के सोपान स्वरूप वर्णित किया गया है। उसमें जुलेखा ने प्रारंभिक पृष्ठ संख्या 139 स्थिति में यूसुफ को स्वीकार किया और उसके लिए सब कुछ त्याग कर देने में संकोच नहीं किया, परंतु यूसुफ की प्राप्ति के पश्चात उसका हृदय हकीकत की ओर मुड़ गया। शाह नजफ अली सलोनी प्रेम चिंगारी एवं अखरावटी। सूफी कवियों में शाह नजफ अली सलोनी का नाम भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने प्रेम चिंगारी और अखरावटी की रचना की। उनके व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं के विषय में बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह उनके आश्रयदाता थे। महाराज उनको 2 रुपए प्रतिदिन देते थे और इनमें से भी वे बहुत सा भाग दान में दे दिया करते थे। उनका निवास स्थान रीवा ही था। यहाँ आज भी उनका मजार वर्तमान है। वे नेत्रहीन थे और उन्हें संपूर्ण कुरान कंठस्थ था, अतएव उन्हें हाफिज कहते थे। उनके संबंध में कई जनश्रुतियां प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि कुछ व्यापारी विक्रय के लिए घोड़ा लाए। महाराज ने उस घोड़े के संबंध में शाह साहिब से परामर्श लिया। उन्होंने घोड़े को टटोल कर कहा, घोड़ा क्या है? भैंसा है। महाराज ने घोड़े की परीक्षा का आदेश दिया। चाबुक सवारों ने उसे खूब दौड़ाया। तंग होकर हाँफते हाँफते वह पानी में प्रवेश कर गया। व्यापारियों से पूछने पर पता चला कि जब यह घोड़ा छोटा ही था तो उसकी माँ मर गई और भैंस का दूध पिलाकर उसका लालन पालन हुआ। इस प्रकार की अन्य कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनका प्रामाणिक आधार प्राप्य नहीं। शाह साहिब के अखरावटी नामक ग्रंथ के कुछ छंद उपलब्ध हैं। एक छंद में उसका रचनाकाल इस प्रकार उल्लिखित है, सन 1224 31 अक्षर बूझ कयो नजफ अखरावटी मनही परा जस सूझ एक। इसके अनुसार इसका रचनाकाल सन 1224 हिजरी अर्थात सन 1809 ईस्वी हुआ। एक अखरावटी छंद 32 पृष्ठ संख्या 140। प्रेम चिंगारी की ग्रंथ तिथि सन 1261 हिजरी सन 1845 ईस्वी है, जैसा कि कवि ने स्वयं लिखा है। सन 1261 माह कही यह कथा प्रेम औगाह। प्रेम चिंगारी में शाह साहिब ने फारसी के सुप्रसिद्ध सूफी कवि मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी की 2 कथाओं का सीधी सरल एवं स्पष्ट अवधि में सफलतापूर्वक उल्था किया है। एक तो है बांसुरी की कथा, जिसमें सूफी अद्वैतवाद को हृदयंगम कराया गया है, तथा दूसरी कथा हजरत मूसा पैगंबर और गड़ेरिये की है, जिसमें गड़ेरिये की ईश्वर के प्रति दास्य भक्ति भावना का प्रकाशन है। प्रेम कथा काव्य की अन्य कई प्रवृत्तियां इसमें नहीं मिलती। शाह नजफ अली ने स्वयं लिखा है कि उसने मौलाना रूम के बैतों की टीका हिंदी में की है और उसे अपने विचारानुसार प्रेम चिंगारी नाम दिया है। मेरे ध्यान बस्यो इकबारा मौलाना रूमी उजियारा चुन चुन कुछ बैते तिनकेरी लाल रतन सो अधिक उजेरी तिन बैतन कर तिलक बनाइयो हिंदी भाषा में कही गायो मन उपजा तस कियो बिचारी राख्यो नाम प्रेम चिंगारी एक। इस प्रकार मौलाना रूम की दोनों कथाओं का ही हिंदी रूपांतर करके प्रेम चिंगारी में शाह साहिब ने समाविष्ट किया है। कवि ने केवल मौलाना के विचारों की अभिव्यक्ति की है, इनमें मौलिक भावों का अभाव है, परंतु हिकायतों का उल्था करने में शाह साहिब पूर्णतः सफल हैं। उदाहरणार्थ मौलाना रूम की प्रारंभिक 6 पंक्तियाँ देखिए, बशनो अज न चू हिकायत भी कुनद बज जुदाहिया शिकायत भी कनद कज नेस्ता ता मरा बबुरीदा अंध अज नफीरम मर्दो जन नालीदा अंध सीना खाहम शरहा शरहा अज फिराक ता बगयम शरहे दर्दे इश्तियाक एक। शाह नजफ अली सलोनी प्रेम चिंगारी पृष्ठ संख्या 141। हर कसे को दूर मानद अज असले खेश बाज जोयद रोजगारे वसले खेश एक। सुनो बांसुरी क्या कथा कहती है, वह विरह का गिला कर रही है कि जब से मुझे नरकट के जंगल से काटा गया है मेरे शेर से प्रभावित होकर नर नारी नीर बहाते हैं। जब विरह वक्षस्थल को टूक टूक कर दे तब कहीं प्रेम पीर की व्याख्या हो सकती है। जो अपने मूल से दूर जा रहा हो वह पुनः प्रिय मिलन का अवसर अवश्य ढूंढेगा। इन्हीं भावों को शाह नजफ अली हृदयग्राही ढंग से बोधगम्य भाषा में व्यक्त करते हैं। सुनो कथा बांसुरिये गावे बिछुड़न की गति रोए सुनावे बंसो काट भई हम न्यारी सबद सुनत रोवे नर नारी छाती ठूक ठूक कह पाऊं तो बिरहा के चोप सुनाऊं प्रिय से मिल बिछुड़े जो कोई फेर मिलन जो है नित सोई दो। प्रतीत होता है कि शाह साहिब को फारसी पर अधिकार प्राप्त था, इसलिए भावों को हिंदी में यथावत प्रस्तुत करने में वे समर्थ हुए हैं। ख्वाजा अहमद नूरजहां। सूफी कवि ख्वाजा अहमद ने नूरजहां नामक ग्रंथ की रचना करके इस साहित्य क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। कवि का जन्म बाबूगंज नामक ग्राम में हुआ। यह गाँव जिला एवं तहसील प्रतापगढ़ में थाना जेठवारा के अंतर्गत है। ख्वाजा साहिब के दादा बेचू कहीं अन्यत्र से आकर बाबूगंज में बसे थे। आपके पिता का नाम लाल मोहम्मद था, जो एक निर्धन कृषक थे। उनके वंश वाले अंसारी कहलाते हैं। ख्वाजा अहमद ने अपना जन्मकाल सन 1830 ईस्वी अथवा संवत 1887 विक्रम बताया है। 3. उन्होंने अपने ग्रंथ नूर जहां की रचना संवत 1962 विक्रम में की। यह तथ्य निम्न अर्धाली से विदित होता है। 1. मसनवी ए मौलवी ए मानवी कानपुर नामी प्रेस दफ्तर 1 पृष्ठ 2-3 प्रारंभिक पंक्तियां। 2. शाह नजफ अली सलोनी प्रेम चिंगारी प्रारंभिक पंक्तियां। 3. पंडित परशुराम चतुर्वेदी सूफी काव्य संग्रह पृष्ठ 207 पृष्ठ संख्या 142 संवत बोनसाई 1662 जाना लिखा कथा सो पूर्व प्रमाणा। 1. परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में पता चलता है कि ख्वाजा अहमद ने अपनी नूरजहां नामक रचना को अपनी मृत्यु से केवल 2 मास पूर्व सन 1312 हिजरी अथवा सन 1905 ईस्वी अर्थात 1932 विक्रम में समाप्त किया था। इस प्रकार वे लगभग 75 वर्ष की आयु पाकर मरे थे। 2. उनकी कुछ पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी एवं कासिम शाह के ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त की थी और अपने को इन पूर्ववर्ती कवियों का चेला तक ठहरा कर उनका अनुसरण किया था। जैसे मलिक मोहम्मद पुरख साना कथा पद्मिनी कीन बखाना गूढ़ चितौर और सिंघल दीपा लिखे उ बखान सुप्रेम सनीपा और कासिम जस दरियाबादी लिखे उ हंस के कथा सो आदि बलख सुचीन प्रेम रस बोवा लिखे उ अरथ जनु समुद बिलोवा अहमद तुम येन सब कई चेला येन के संग चरण धय खेला जहलो मीत संग कह रहे उ बन हिंछा के मिली सब कहेउ लिखो समुझी किछु प्रेम कहानी प्रेम बिरिच कह करहु किसानी। 3. ग्रंथ के नूरजहां नाम से ऐसा भ्रम होता है कि इसके कथानक का संबंध मुगल शासक जहांगीर की सुविख्यात रानी नूरजहां से होगा, परंतु यह एक काल्पनिक कथानक है जिसका इतिहास से तनिक भी संबंध नहीं। इस ग्रंथ का अंत खुर्शेद एवं नूरजहां और गुलबोस के मिलन हो जाने पर होता है, अतएव कथा सुखांत है। शेख रहीम भाषा प्रेम रस। हिंदी के प्रेमाख्यान रचयिताओं में शेख रहीम का स्थान भी महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ भाषा प्रेम रस बहुत प्रसिद्ध है। 1. वही पृष्ठ 207 2. वही पृष्ठ 207 3. वही पृष्ठ 207 आत्म परिचय देते हुए शेख रहीम ने भाषा प्रेम रस आरंभ में लिखा है पृष्ठ संख्या 143 नाव रहीम मोर जग जाना जरवल नगर जन्म अस्थाना जाना चाहो जात हमारी हनफी मता शेख अंसारी पितुकर यार मोहम्मद नाऊ वो नबी शेख कहे सब गाऊ पितुके पिता शेख रमजाना आगे कहाँ लग कहाँ बखाना 5 बरस रही के ममसीसा पिता हमार सरग मगदीसा कीन पिता जो आपन चोला नाना खुदा बख्श मोहिपाला कुछ उत्तम सैयद बड़े अली विलायत नाऊ सोई मोरे हैं गुरु मैं चरणन बलि जाऊं। 1. उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि उनका नाम रहीम था। उनके पिता का नाम यार मोहम्मद था, जिनको गांव वाले शेख कहते थे। उनके दादा शेख रमजान थे। जब वे केवल 5 वर्ष के थे तो उनके पिता का शरीरांत हो गया। तत्पश्चात उनके नाना खुदा बख्श ने उनका लालन पालन किया। उनका जन्म जरवल नामक नगर में हुआ। उनके गुरु का नाम सैयद विलायत अली था। शेख रहीम ने अपनी शिक्षा आदि का कुछ परिचय इस प्रकार दिया है। उर्दू फारसी कुछ कुछ सीखो भाषा स्वाद तनिक इस धीखो पद्मावत देखो निर्धाई मलिक मोहम्मद के केर बनाई हंस जवाहिर कासिम केरी पढ़ो सुनो पुस्तक बहुतेरी तहसे मोहु भयो यह जोगा भाखा भाख कहूं सजोगा। 2. उन्होंने उर्दू और फारसी की थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने जायसी कृत पद्मावत और कासिम शाह कृत हंस जवाहिर ऐसी रचनाओं के अध्ययन से प्रेरित होकर हिंदी भाषा में प्रेम कथा रची, जिसका उद्देश्य मनोरंजन ही था। कवि ने स्वयं लिखा है, मित्र महाशय गुण सदन चित्त बहलावन हेत कहो कहानी प्रेम की होए के सुनो सचेत। 3. 1. श्री परशुराम चतुर्वेदी सूफी काव्य संग्रह शक 1880 पृष्ठ 212। दो, श्री परशुराम चतुर्वेदी सूफी काव्य संग्रह शक 1880 पृष्ठ 213। तीन, डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य लखनऊ संवत 2013 पृष्ठ 542 पृष्ठ संख्या 144। शेख रहीम ने भाषा प्रेम रस में रचना तिथि का उल्लेख किया है। उन्होंने ग्रंथ का लेखन समय सन 1900 के उपरांत 3-12 अथवा 15 दिया है। अतएव इस प्रेम कथा की रचना सन 1915 तदनुसार संवत 1771 विक्रम में हुई। उस समय सम्राट सप्तम एडवर्ड का देहांत हो चुका था और उनके पुत्र जॉर्ज पंचम का शासनकाल प्रारंभ हो चुका था। जैसे एडवर्ड सतये जग जाना भयो सरग मह जिनकर थाना, पंचम जॉर्ज तेहि सुत न्यायी जगमा कीरत जिनकर छाई, 3-12 सन 19 ईसा बरनु कथा सुमेरी जगदीशा। एक, भाषा प्रेम रस का कथानक ऐतिहासिक न होकर कल्पना प्रसूत है। कई स्थलों पर अलौकिक पात्रों एवं घटनाओं का समावेश किया गया है जिनके फलस्वरूप स्वाभाविकता पर कुप्रभाव पड़ता है। कथानक सुखांत है। प्रेमाख्यानों में और विशेषकर सूफी काव्य ग्रंथों में भाषा प्रेम रस का विशिष्ट स्थान है। भाषा प्रेम रस में यूसुफ जुलेखा की प्रेम कथा दृष्टांत के रूप में वर्णित है। इसमें कुरान में वर्णित आदम और अबलीस की कथा का उल्लेख भी किया गया है। कवि नसीर प्रेम दर्पण। सूफी कवियों में प्रेम दर्पण के रचयिता नसीर अच्छे कवि माने जाते हैं। कवि नसीर ने प्रेम दर्पण में अपने विषादपूर्ण जीवन पर आलोक डालते हुए निम्न पंक्तियां लिखी हैं। गाजीपुर जिला जिहि ठाऊं, ताहे मांझ जमनिया गाऊं, वही जन्म भूमि है मोरा, निज बरतंत कहूं कुछ थोरा, बारे समय पिता मोरे न्यारे, इह जग से बैकुंठ सिधारे, माता पुनि मोहे पालन कीन्हा, पंडित राख मोहे विद्या दीन्हा, दरबोलत के बारी साथा, कियो मोर व्याह धरायो हाथा, माता पुनि मृत्यो रख चाखी, माटी मांझ जाय पग राखी, पुनि मोरे जन्मे तीन, पाले पुनि गए सरग के पाना। एक, श्री परशुराम चतुर्वेदी सूफी काव्य संग्रह पृष्ठ 214 पृष्ठ संख्या 145। नाजी ताही वियोग में दियो परान के त्याग, विधना मोरे भाग के का अस लिखो कुमाग, कियो बियाह पुनि दूसरे बारी, आनो भवन में सुंदर नारी, दोई मास पाछे वह नारी, वह माटी में सेज समारी, तीजे बार कुटुंब मताले, सुंदरी एक घर ब्याह के लाए, दोई बरस रही घर मोरे आई, मोह माया अधिक बढ़ाई, अंत वहु मृत्यु रस चाखा, गई परान तोर अभिलाखा, जस दुखी हूँ मैं जग माही, तस न केहू संसारा। एक, इन पंक्तियों से विदित होता है कि कवि नसीर का जन्म गाजीपुर जिला के अंतर्गत जमनिया नामक ग्राम में हुआ। शैशव काल में उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। माता ने उनका लालन पालन किया तथा एक अध्यापक नियुक्त करके उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने 3 विवाह किए। उनका पहला विवाह एक धनी की पुत्री से हुआ। इस पत्नी से उनकी 3 संतानें हुईं जो मर गईं। इन बच्चों के शोक में उनकी पत्नी भी परलोक सिधार गई। उन्होंने दूसरा विवाह किया किंतु दूसरी पत्नी भी 2 मास के पश्चात चल बसी। उन्होंने तीसरा विवाह किया। तीसरी पत्नी भी 2 वर्ष तक जीवित रहकर उनका साथ सदा के लिए छोड़ गई। अंतिम पत्नी के साथ उनका विशेष अनुराग था। उसकी मृत्यु से कवि नसीर अत्यधिक दुखी हुए और पागलों की भांति इधर उधर घूमने लगे। घूमते फिरते वे कलकत्ता में पहुंचे। कलकत्ता में जैसा कि निम्न पंक्तियों से स्पष्ट है, वे सुंदरिया पट्टी की कोठी नंबर 107 में ठहरे। इस कोठी में मोहम्मद शफी नामक एक व्यापारी रहता था। कवि नसीर इसके पास रहने लगे। मोहम्मद शफी ने उनको परम दुखी देखकर उनका जी बहलाने के लिए कई प्रेम गाथाएं सुनाई। इन प्रेम कहानियों में से उन्हें फारसी कवि जामी की यूसुफ जुलेखा सबसे अच्छी जान पड़ी। एक, डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य संवत 2012 पृष्ठ 565-66। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि फिगार पृष्ठ संख्या 146 नाम के एक कवि ने उसका उर्दू भाषा में अनुवाद भी किया है जिसका नाम इश्क नामा है। इसी इश्क नामा के आदर्श ही पर उन्होंने अपनी रचना प्रेम दर्पण की जिस पर यूसुफ जुलेखा का पूर्ण प्रभाव है। कलकत्ते मुह सुंदर पाटी नंबर 107 जय कोठी के गुरु मन के मोरे बोले, प्रेम खुनी के ढकना खोले, जो जो प्रेमी कब भय और जिन जो पोथी कीन, उन सब कवि के बरन के एक एक कही दीन, जिनके वचन बहु सुंदर देखा, जस पोथी यूसुफ ओ जुलेखा, और फिगार प्रेम रस कहानी, उर्दू में यह लिखिन कहानी। एक, अपने ग्रंथ के रचना काल के संबंध में कवि ने लिखा है, हिजरी 1335 था, जैकीद मास 24, सम्मत 1974, भादो बदी द्वादश अंतर, जुमा का दिन जानो तुर्काना, सुख का दिन जानो हिंदुवाना, करके बहुत ही कष्ट कलेशा, यही दिन कथा कियो मैं सेसा। दो, अर्थात इस प्रेम गाथा की समाप्ति मैंने उस दिन की जब हिजरी सन 1335 के जैकीद मास की 24वीं तारीख थी। उस दिन संबत 1974 विक्रम के भादो महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी थी और शुक्रवार था, जो मुसलमानों के अनुसार जुमा कहलाता है। कवि निसार की भांति कवि नसीर की रचना में कथानक विषय कोई नवीनता एवं मौलिकता नहीं। एक, डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य, संवत 2013, पृष्ठ 565-66। दो, क, पंडित परशुराम चतुर्वेदी सूफी काव्य संग्रह, शक 1880, पृष्ठ 219। ख, डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य, संवत 2013 विक्रम, पृष्ठ 567। प्रेम दर्पण की कथा वस्तु मुख्यतः यही है जिसकी चर्चा कवि निसार कृत पृष्ठ संख्या 147 यूसुफ जुलेखा के प्रसंग में की जा चुकी है। इसमें भी प्रेम की तीव्रता का स्वाभाविक विवरण है। इनके अतिरिक्त काम रूप की कथा एवं कथा कुमरावत अली मुराद कृत रचनाएं भी मिलती हैं, जिनके रचयिता तथा रचना काल संबंधी तथ्य संदिग्ध हैं। कवि हुसैन अली प्रणीत पुहपावती की प्रति खंडित है। निष्कर्ष, अंत में हम कह सकते हैं कि पहले पहल अधिकांश सूफी कवियों के काव्यों का मूल आधार भारतीय लोक कथाएं रहीं, परंतु 18वीं शती ईस्वी और उसके बाद के कवियों ने अरब या ईरान की कहानियों अथवा कुरान में वर्णित कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया। इन परवर्ती कवियों पर फारसी सूफी काव्य के सुप्रसिद्ध महाकवि मौलाना जामी की प्रख्यात मसनवी यूसुफ जुलेखा का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। सर्वप्रथम कवि निसार ने अपनी रचना के कथानक को यूसुफ जुलेखा से लिया और उसका नाम भी यूसुफ जुलेखा रखा। शेख रहीम ने अपने ग्रंथ भाषा प्रेम रस में इसी प्रेमाख्यान का विस्तृत वर्णन दृष्टांत के रूप में किया। कवि नसीर ने पुनः इसी कथानक का आधार लेकर अपने ग्रंथ प्रेम दर्पण का निर्माण किया। शाह नजफ अली सलोनी ने अपनी रचना प्रेम चिंगारी में अपूर्व प्रतिभा संपन्न एवं लब्ध प्रतिष्ठ फारसी सूफी कवि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की विश्व विश्रुत मसनवी की दो कथाओं का उल्था किया है। शेख रहीम ने कुरान में वर्णित आदम और इबलीस की कथा का उल्लेख भी किया है। इसी प्रकार ख्वाजा अहमद की रचना नूर जहां आदि में भाषा, वक्तव्य, विषय, कथा कहने की शैली में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, उनसे समय के परिवर्तन और कवियों के नवीन दृष्टिकोण का परिचय मिल जाता है। इस संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत उल्लेख्य है, पृष्ठ संख्या 148। यद्यपि इन सूफी काव्यों की परंपरा 20वीं शताब्दी तक अविच्छिन्न रूप से चलती रही है, तथापि अंतिम दिनों में न तो इस धारा ने हिंदी काव्यधारा को प्रभावित किया है और न स्वयं ही उसके द्वारा प्रभावित हुई है, फिर भी यह साहित्य हिंदी का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें मनुष्य के वास्तविक हृदय की ऐसी तड़पन व्यक्त हुई है जो जाति, देश, संप्रदाय से परे है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य, दिल्ली, सन 1955 ईस्वी, पृष्ठ 268।